الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران کی آیت 175 کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ تجزیہ کیا صورتحال کا، لوگوں کے نصیحتیں کیں، منافقین کی غلطی کو آگاہ کیا، صحابہ کے بارے میں جو باتیں فرمانی تھی وہ فرمائیں، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں جو باتیں کہنی تھی وہ کہیں. اب آگے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافہم وخافونی ان کنتم مومنین. شیطان تو بس اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اور تم لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو اگر مومن ہو. تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں ہی کو ڈراتا ہے. دونوں میں بات بدل جائے گی. جو عام طور سے ترجمہ کیا گیا ہے، سارے اردو مترجمین مفسرین نے غالباً یہی کیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی اس وقت خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی ساری قریش کی ساری فوج، ابو سفیان کی ساری فوج، اس سارے کو اولیاء کہا گیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، کہ وہ ابو سفیان کے لشکر سے ڈراتا ہے. ترجمہ تو ہو سکتا ہے یہ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن پیچھے جو لوگ بھاگے تھے، جو ڈرے تھے، جو اب جانے کو تیار نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ جو آواز لگائی کہ آؤ خالد بن ولی ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہیں، وہاں جہاں وہ تیاری کر رہے ہیں جمع ہونے کی، تو اس میں جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہیں کہا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کے دوست ہیں. تو شیطان نے انہی کے دلوں میں خوف پیدا کیا. جو پکے ایمان والے تھے انہوں نے لبیک کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. جو پچھلی آپ کو بات یاد ہوگی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم، کہ وہ لوگ بھی ہیں ان کے اندر کہ جنہوں نے چوٹ لگنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا تھا. تو اب ڈرنے والے کون ہوئے؟ صحابہ تو نہیں ڈرے، وہ تو چلے گئے. تو اس کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شیطان صرف اپنے دوستوں ہی کو ڈراتا ہے، جو اس کے دوستی کو قبول کرتے ہیں انہی کو ڈراتا ہے. یہ مضمون دوسری جگہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیاطین اپنے دوستوں ہی کے پاس آتے ہیں. اس کا ایک خاص مطلب ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ میں اگر شیطان کی باتوں میں آنا چاہوں گا، اس کی باتوں کو پسند کروں گا، تو تبھی شیطان مجھے گمراہ کر سکے گا، وگرنہ نہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ شیطان کے دوست ہیں اس معنی میں کہ جیسے میری اور آپ کی دوستی ہے، اس معنی میں نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، بلکہ جنہوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا اس کیس کے اندر، اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے وسوسوں میں آ گئے، تو وہ گمراہ، وہی ڈرے اور کوئی نہیں ڈرا. تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے دوست ہی اسے ڈرتے ہیں، انہی کو وہ ڈرا پاتا ہے، مومنین کو وہ ڈرا نہیں پاتا. اس لیے تم لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو. تو یہ اب مضمون جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو سے جو مکمل کر دیا ہے کہ احد میں جو واقعات ہوئے، اس میں جو سوالات اٹھے، جو اعتراضات اٹھے، ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اپنے اس کام کو جو ہوا احد کے میدان میں، جو 70 صحابہ شہید ہوئے، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ کیوں ہونا ضروری تھا وہ، اور اگر ہوا ہے تو ان کو کیا ہوا ہے. وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، کھا پی رہے ہیں، خوش ہیں، خرم ہیں، اور جو یہاں رہ گئے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ رات کو سو نہیں سکے، ڈرتے رہے. تو وہ بہتر ہوئے کہ یہ بہتر ہوئے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب آگے ایک دوسرا مضمون اسی حوالے سے شروع ہو رہا ہے کہ اب جو ان سوالات کے اندر ایک سوال تھا، اور وہ کسی نیک سے نیک آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ابو سفیان اور خالد بن ولید کو ایسا موقع کیوں مل رہا ہے کہ وہ فوجیں اکٹھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ये भी बताया जाता है कि उहद के मैदान में खालिद बिन वलीद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए कहा कि अगले साल बदर में मिलेंगे इसी दिन। ठीक है, तो नबी सब ने कहा कि इंशाल्लाह मिलेंगे। अब वो साल आ गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी शुरू कर दी। अब खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान ने भी तैयारी शुरू की, लेकिन उनको लगा कि ज़रा डर गए कुछ, तो उन्होंने लोग भेजे कि मदीना में जाकर फ़ज़ा पैदा करें, जंग ना की जाए, ये किसी को 100 ऊँट देने का वादा किया, किसी को कुछ, 10 ऊँट, 100 नहीं, 10 ऊँट देने का वादा किया, किसी को कुछ। तो वो आए आके मदीना में फ़ज़ा बनाई, लेकिन नबी अकरम सब ने कहा कि मैं तो अकेला भी निकलूँगा तो जाऊँगा, मैंने वादा कर रखा। ठीक है, तो बहरहाल 1500 के करीब सहाबा तैयार हो गए, निकले। तो जब अबू सुफियान वगैरह को, खालिद बिन वलीद को कहना चाहिए, जब खबर पहुंची गए वो तो निकल आए हैं, तो फिर ये वापस चले गए अपने साथियों को ये कहकर कि ये आज का दिन अच्छा नहीं है, हम अगले साल जंग करेंगे। तो अब ये जो था, उस सारी बातों के ऊपर, या खुद ओहद में जो कुछ हुआ, या ओहद के बाद जो वाक़यात हुए कि वो इकट्ठे हुए वापस आने के लिए, तो वो जो कुफर के अंदर जो उनकी कोशिशें थीं, उनके जो इकदामात थे, उनकी प्लानिंग्स थी, बात कामयाब हो जाती थी, बाज़ नाकाम रहती थी, उसके बारे में एक ख्याल दिल में आता है कि अल्लाह ताला इनको ये क्यों मौका दे रहे हैं ऐसा करने का, कि बस रसूल है अल्लाह का और उसके सहाबा हैं, तो बस मामला ख़त्म कर देना चाहिए। ये क्या बात हुई कि वो अपनी जो ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, वो आ जाते हैं, फौजें भी उनके साथ, लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं, लोग ही इकट्ठे ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों में बात डाल दे, उसको, उस बात को अब लिया है। फरमाया वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ्र, जो लोग कुफर में जद्दोजहद कर रहे हैं, तेज़ी दिखा रहे हैं, उनकी ये तेज़ी आपको दुखी ना करे, आपको रंज ना पहुँचाए। इन्नहुम ला यज़ुर्रुल्लाह शैया, ये अल्लाह को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन युरीदुल्लाहु अल्ला यजर लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरा, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि इन काफ़रों का आखरत में कोई हिस्सा ना रहे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनको पूरी बड़ी सज़ा मिले। ये अब उसकी हिकमत बताई कि मैं इन काफ़रों को इन कोशिशों का मौका क्यों दे रहा। तो अब ये जो चीज़ है, ये ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के, मैंने बताया कि उहद की इस जंग में जितनी बातें अल्लाह ताला ने कही हैं वो बहुत ही अल्लाह ताला के मामलात को समझने में मुआवन है, कि अल्लाह ताला दुनिया में मामलात कैसे करते हैं। तो हम कई मौक़ों पर परेशान हो रहे होते हैं कि ये जो लोग हैं बुरी हरकतें करते हैं, इनको अल्लाह ताला मौका ही क्यों देते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करें, इस तरह के मामलात करें, तो ये अल्लाह ताला क्यों मौका देता है उसको? अल्लाह ने इतना पैसा ही क्यों दे रखा है कि वो सर के ऊपर चढ़ाई कर रहा है? उसको अल्लाह ताला ने ये क्यों दे रखा है? अल्लाह ताला ने ये क्यों दे रखा है? उसका यहाँ वो हिकमत मौजूद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस तरह के कामों के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। यहाँ हिकमत क्या थी? यहाँ ये थी कि वो अपने कुफर में पूरी तरह खुलकर सामने आ जाए, उन्होंने जो रसूल के ख़िलाफ़ करना है वो कर गुजरें, अपनी पूरी जो जद्दोजहद करनी है तो कर लें, कर क्या रहे हैं वो अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपने ही आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनके लिए अजाब अजीम होगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो खुदा के बारे में नज़रियात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाज़ूकात हदूद से तजावुज़ किए हुए होते हैं, गलत होते हैं। अल्लाह ताला ने जो सज़ा देने का कानून बना रखा है उसके मुताबिक सज़ा होगी ही होगी। अल्लाह ताला को इस मानी में रहमान नहीं समझना चाहिए कि वो मुजरमों को माफ़ कर देगा, ये उसकी रहमत के ख़िलाफ़ है। रहमत के अंदर अदल उसका लाजमी हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता कि रहमत हो और उसमें अदल ना हो, डाकू भी खुश हो और मजलूम भी बेचारा मौजूद हो, ये हो नहीं सकता, ये रहमत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये तो वाज़े बात है कि काफिर को, अल्लाह के दुश्मन को, रसूल के दुश्मन को, दीन के दुश्मन को, इंसानों के दुश्मन को, इन सब को सज़ा मिलनी मिलनी, ये हो नहीं सकता कि उनको सजा ना मिले। तो उसको यहाँ बयान कर दिया कि फिर अल्लाह ताला जब मोहलत देने लगते हैं, इसको मोहलत आगे खुद अल्लाह ताला ने बयान किया है मोहलत के लफ्ज़ से, तो अल्लाह ताला ढील दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो अब इनको जो कुफर में जद्दोजहद की अल्लाह ने आज़ादी दे रखी है, तो ये उसका ढील का बयान है। गोया वो आगे चलकर लफ्ज़ों में भी अल्लाह ताला बयान कर देंगे। तो काफिर जो कुछ कर रहे हैं, कुरैश मक्का जो कुछ कर रहे थे अपने कुफर के लिए, वो अल्लाह ताला ढील की बुनियाद पे होने दे रहे थे, ताकि ये अपने आप को पूरी तरह वाज़े कर दें, अपने कुफर के साथ दुनिया से रुखसत हों, ताकि इनको अपने किए की सज़ा मिल जाए और एक अज़ाब अज़ीम इनको मिले। इन्नल्लज़ी नश्तरबुल कुफ्र बिल ईमान ला यज़ुरुल्लाह शैया वलहुम अज़ाबुन अलीम। बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफर को पसंद किया है ईमान के मुकाबले में, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनके लिए अजाब अलीम है। उसी बात को दोहराया है, लेकिन अब वजह बताई है कि वहाँ तो युसारिऊन फिल कुफर था, यहाँ ये वजह बताई कि वो कुफर को इख्तियार कर रहे हैं ईमान को छोड़कर, उनका जुर्म बयान करने के लिए। यानी एक आदमी अपने ईमान के साथ गलत जगह पर खड़ा है, वो पोजिशन और है, उसमें नरमी का हक़ बनता है कि आदमी समझ रहा है कि अल्लाह का हुक्म यही है, अल्लाह की बात यही है। ये लोग जो हैं ये खुदा का इनकार करके कुफर के ऊपर खड़े हैं और फिर अल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ अल्लाह सामने आ चुका है वादे तौर पर और एक तरफ ये खड़े हैं। इसलिए ये जुमला इसलिए बीच में डाला गया, लाई यज़रुल्लाह शैया, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके, यानी अल्लाह की दुश्मनी में आ गए। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जुर्म किस नौइयत का है। जुर्म ये नहीं है कि वो कोई गलत फहमी का शिकार हैं या कुछ मसला है, नहीं, वो खुले तरीके पर खुदा के मुकाबले में आ गए। वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। खुदा के जो कवानीन हैं, उन कवानीन के अंदर अल्लाह ताला कभी तब्दीली नहीं करते। जो कवानीन, कवानीन से मतलब मादी कवानीन, कुरान मजीद ज़ेर बहस नहीं लाता, उसमें अल्लाह ताला तब्दीली करते रहते हैं। वो कवानीन जो अल्लाह ताला ने अपने तरीके के तौर पर इख्तियार किए हैं, उनमें से एक हदायत का असूल है कि हदायत जो असूल पर पूरा उतरेगा उसको ही हदायत मिलेगी, जितनी उसने जद्दोजहद की उतनी ही मिलेगी। इसी तरह जो ईमान के लिए कोशिश करेगा उसको ईमान मिल जाएगा, जो उसके लिए कोशिश नहीं करेगा ईमान नहीं मिलेगा। इसी तरह कायनात, दुनिया इंसानों के लिए आजमाइशगाह बनाई गई है। ये हर बंदे ने जो भी बालिग होने की उम्र को पहुंचा है लाजमन आजमाइश में से गुजरेगा, ये उस पक्का असूल है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल हो और इम्तिहान में ना हो। अम्बिया औलिया समेत सब की बात कर रहा हूँ, अमीर गरीब जाहिल पढ़ा लिखा अनपढ़, सब इस आजमाइश में से लाजमन गुजरेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जब तक ये कायनात क़यामत तक कायम है तब तक, और इंसान इसके अंदर हैं, उनकी आजमाइश होती रहनी है। तो ये जो चंद चीज़ें हैं इसमें अल्लाह ताला कोई तब्दीली नहीं करते। ये जो अल्लाह के असूल हैं, दुनिया को चलाने के कवानीन जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, दुनिया बनाने के कवानीन, उसको अल्लाह ताला ने कभी अपना कानून नहीं कहा। मैं इसलिए जो जुमला बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने, अल्लाह ताला उनकी हसनात को कबूल करे, उन्होंने ये राय दी कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। इसको उन्होंने मादी कवानीन के मानी में लिया और ये कहा कि हज़रत ईसा मसलन वो बिन बाप के पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि वो अपना कानून तोड़े। तो अल्लाह की सुन्नत तो यही है कि मियां बीवी के मुलाकात से औलाद पैदा होती है। तो इसलिए उन्होंने फिर पूरी कुरान की उन आयतों की नई तौजीह की, जो मंगेतर थे हज़रत मरियम के, उनको शोहर करार दिया, और इस तरह से पूरी एक नई उन्होंने, तो लन तजिदा लिसुन्नत अल्लाह ही तब्दीला, ये अल्लाह ताला की उन सुन्नतों के लिए है जो रसूलों के बाब में आई है कि अल्लाह के रसूलों को जो इनकार करेगा उनको लाजमन सज़ा मिलेगी, उसमें नरमी नहीं की जाएगी। तो इसलिए मादी कवानीन अल्लाह ताला ने कई दफ़ा तोड़े हैं, हज़रत ईसा के ज़रिए से तोड़े हैं, हज़रत नूह के ज़रिए से तोड़े हैं, हज़रत मूसा के ज़रिए से तोड़े हैं। वो असा मारते हैं, दरिया फट जाता है। वो कौन सा मादी कानून है जो असा की ज़र्ब लगने के बाद दरिया को फाड़ दे और इतनी देर फाड़े रखे कि पूरी हज़ारों की तादाद में लोग उसमें से गुजर जाएं, फिर फिरौन भी आए और आधा सफ़र तय कर ले और फिर पानी छोड़ दिया जाए। ये अल्लाह ताला अपने कवानीन को तोड़ते हैं। तो वो कवानीन मादी कवानीन वो अल्लाह के कवानीन के तौर पर नहीं है, वो अल्लाह का मादी तरीका है काम करने का। लेकिन जो अल्लाह के अपने असूल हैं कि उसने रहमत करनी ही करनी है, कतबा अला नफ्से रहमा, उसको कभी नहीं तोड़ेंगे। जितना जिसका हक होगा उतनी रहमत की जाएगी। इसी रहमत को अल्लाह ने इस तरह से बयान किया है कि हर जुर्म की पूरी पूरी सज़ा मिलेगी, ज़र्रा बराबर भी ज़्यादा नहीं होगी, पूरी सज़ा बस। यानी गुस्सा अल्लाह ताला को फिरौन पे बहुत है, लेकिन सज़ा उसको जुर्म के मुताबिक मिलेगी। ये हमारी तरह नहीं कि हम अपनी किसी औरत को देखते हैं कि वो कोई ऐसी हरकत कर रही है तो कत्ल ही कर दिए, हालांकि उस पर दो चार लगनी चाहिए बस, हम उसको कत्ल कर देते हैं। नहीं, अल्लाह ताला अगर दो लगनी है तो दो ही लगाएंगे, दस लगनी है तो दस लगाएंगे, अगर दो जख्म फेंकना है तो दो जख्म फेंकेंगे, उतनी ही सज़ा देंगे जितना जुर्म है। ये उसकी रहमत है। तो इस तरह की चीज़ों में अभी अल्लाह ताला कभी भी ख़राबी नहीं करेंगे, अपने वादे भी हमेशा पूरे करेंगे। ये वो जो बात कह देते हैं वो सच्ची होती है, और अल्लाह से बढ़कर सच्चा कोई नहीं है। तो यहाँ ये बात बताई कि जो ईमान के मुकाबले में कुफर को तरजीह देंगे लाजमन सज़ा पाएंगे। तो यहाँ जुर्म बयान हो रहा है कि जानते बूझते हक बात वाज़ होने के बाद, सच्चाइयाँ खुल जाने के बाद, रसूल की सच्चाई सामने आ जाने के बाद ये इनकार कर रहे हैं, तो अब ये अल्लाह के दुश्मन के तौर पर खुदा के सामने खड़े हैं, तो इसलिए इनको लाजमन सज़ा मिलेगी, ये माफ़ नहीं किए जाएंगे सिवाय इसके कि दुनिया में तौबा कर लें। ये अल्लाह ताला का कानून है। सूरह मायदा में जब पहुँचेंगे तो जो खुदा के मुकाबले में सरकशी करे, पकड़े जाने से पहले पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो पकड़े जाने का मतलब है मौत का टाइम। एक है मुजरमों को पकड़ने का टाइम, वो भी ठीक है कि जब डाकू कब्ज़े में आ गया अब उसकी माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। अगर वो पुलिस के इकदाम से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है कि भाई मैं गलती का शिकार था, मैं वापस आना चाहता हूँ, तौबा करना चाहता हूँ, जो आप लोग मामला करना चाहते हैं कर लें, तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन कब्ज़े में आ जाए फिर नहीं। तो ऐसा ही अल्लाह ताला ने भी कानून रखा है कि जब तक मेरी आपकी सांस चल रही है, जब तक मेरी आपकी सांस चल रही है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। जिस दिन फरिश्ते आ गए मेरी आपकी जान लेने के लिए, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो इसको अल्लाह ताला मौका रखते हैं, हर आदमी रखता है, अबू जहल भी रखता था, अबू लहब भी रखता था, अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अबू जहल इस्तेमाल नहीं कर सका। इन दोनों बुज़ुर्गों को 23 साल लगे हैं ईमान को कबूल करने में, लेकिन कर लिया। अब खालिद बिन वलीद के जरायम कम नहीं है, उहद में जो कुछ कर गए हैं उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनका ईमान कबूल किया है, अल्लाह के रसूल ने उनको अपनी तलवार का लकब दिया है, तो लगता यही है कि माफ़ी हो गई। ऐसे ही अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों के साथ हुआ कि उन्होंने कुफर को छोड़कर ईमान को इख्तियार कर लिया, तो निजात पा गए। वला यहसबन्नल्लज़ीना काफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम। अब वो मोहलत जो मैं बता रहा था वो बयान कर दिया अल्लाह ताला ने। वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, हम जो उनको मोहलत दे रहे हैं वो उसको अपने लिए अच्छा ना समझें। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन, हम उनको मोहलत दे रहे हैं कि और अपने गुनाहों में इजाफा कर लें। अब देखिए कितना सख्त बात है कि अल्लाह ताला खुदाए रहमान और रहीम कह रहे हैं मैं मोहलत इसलिए दे रहा हूँ कि वो और जरायम कर लें, और जरायम कर लें। तो अब दो रास्ते होते हैं आदमी के पास। अगर वो नेकी इख्तियार करें तो अल्लाह ताला तौफीक देते हैं कि और नेकी कर लो, और नेकी कर लो, और नेकी कर लो। और अगर आदमी कुफर के रास्ते पर, बदनवानी के रास्ते पर चल पड़े तो ढील देते चले जाते हैं। लेकिन ढील शुरू में नहीं देते, शुरू में पकड़ते हैं, शुरू में डराते हैं, धमकाते हैं, नुकसान करते हैं, कभी बाप ने देख लिया, कभी माँ ने देख लिया, कभी हमसायों ने देख लिया, कभी पुलिस ने देख लिया, कभी को जेल में भी डाल दिया। लेकिन जब आदमी बाज नहीं आता तो फिर एक टाइम आता है कि मोहलत दे देते हैं। ये ख़त्म कुलूब का टाइम होता है असल में। ख़त्म कुलूब में अल्लाह ताला टाइम लेते हैं। मसलन आप खालिद बिन वलीद को देखिए, अबू सुफियान को देखिए, 23 साल तक ख़त्म कुलूब नहीं हुई, हालांकि ईमान नहीं ला रहे, लेकिन लगता है कि अंदर ही अंदर की कशमकश जारी थी, जिसको वो अहमियत दे रहे थे। बज़ाहिर कुफर पे खड़े थे, लेकिन अंदर कुछ तोड़फोड़ हो रही थी। अल्लाह ताला उसका लिहाज करते हैं। तो 23 साल तक खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान को ख़त्म कुलूब की सज़ा नहीं दी। अबू जहल को 13 साल में दे दी, ठीक 13 साल। वो बदर में कुफर की हालत में फौत हो गया। तो वजह क्या है कि अबू जहल ने एक लम्हे भी नहीं सोचा कि अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है, मैं तवज्जो ही दे लूँ। लेकिन अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद यकीनन, क्योंकि फ़तेह मक्का के मौके पर अल्लाह ताला ने, सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर मैं जंग करने देता तो कितने ही मुसलमान मारे जाते जो दिल में ईमान ला चुके थे। तो अल्लाह ताला दिल, चूँकि दिल के भी हालात जानते हैं, तो ख़त्म कुलूब फ़ौरन नहीं करते। किसी के यहाँ कशमकश चल रही है, हम सूरह अल बकरा पढ़ चुके हैं। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने यहूद के उन दानश्वरों को भी मौका दिया जो कह रहे थे जी हमारा भी ईमान कबूल कर लें, हम भी तो आखिर ईमान वाले हैं, हमने भी अम्बिया को मान रखा है, हम भी अल्लाह को मानते हैं, तो मान लें इतना हमारा ईमान, हम आपका ईमान मान लेते हैं, लेकिन ये आप मजबूर ना करें कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। ये हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ने इतनी अहमियत दी इस मसले को भी कि पूरी सूरह उनके लिए उतारी है, सूरह अल बकरा। उनके साथ गुफ्तगू की है, उनके सवालों के जवाब दिए, उनके ऊपर एतराज़ात उनको बताए हैं, क्या तुम्हारा रद्द अमल रवैया क्या है। तो अल्लाह ताला इतनी कदर करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इम्कान है तो वो मौका देते हैं, थोड़ा सा भी इम्कान है। लेकिन अगर आदमी सारे दरवाजे बंद कर ले तो फिर अल्लाह ताला ये वाली ढील देते हैं। तो ये उन काफिरों के लिए बात हो रही है जो उस जगह पर पहुँच चुके हैं कि अब उनके ऊपर ख़त्म कुलूब हो जाए। ठीक है, तो वो लोग जो जिनको हम मोहलत दे रहे हैं, वो ये ना समझें कि ये मोहलत उनके फ़ायदे की चीज़ है। ये हम इंसानों के यहाँ बड़ी गलत फहमी होती है, अच्छा मैंने तो वो काम कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, वो समझ रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। ये खुदा की इस बनाई हुई दुनिया में ये बड़ी गलत फहमी होती है कि मैंने तो इतना कुछ किया, जी अल्लाह ताला ने कुछ किया नहीं, मैं तो नहीं पकड़ा गया, ना पुलिस आई ना कुछ हुआ। बल्कि वो बाज़ लोग तो इतने जरी हो जाते हैं कि हराम की कमाई होती है और कहते हैं कि हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है मेरे ऊपर जी, मैंने इतना शानदार घर बनाया है। तो वो इस मोहलत से इतना फ़ायदा उठा रहे होते हैं, वो समझते हैं कि बस ठीक है, अल्लाह की दुनिया अंधेर नगर है, जो मर्ज़ी कर लीजिए। तो उसको बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये ख्याल ना करें कि जो मैं इनको मोहलत दे रहा हूँ ये इनके फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ नहीं। इस मोहलत की वजह समझ लीजिए, कई वजह हैं, लेकिन असल में हर आदमी, ख्वा वो फिरौन हो अबू जहल हो, वो नेकियां कर रहा होता है, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा होता, तकवे की वजह से नहीं कर रहा होता। मसलन अबू जहल ने अपनी माँ को तो घर से नहीं निकाला, पता नहीं कितनी खिदमत की हो, उसने कई गरीबों को खैरात दी होगी, तो उसकी उसको जजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो दुनिया में देने के लिए उनको ख़त्म नहीं किया जाता, वो जरायम भी करते रहते हैं, उनको इनाम भी मिलता रहता है। जितनी उन्होंने नेकियां की होती हैं उनका इनाम यहीं चुका दिया जाता है, सवाए इसके कि अल्लाह ताला ये फ़ैसला कर लें कोई ऐसा जुर्म हो जाए कि दुनिया में भी हफ्ते अमाल हो जाए, फिर एक अलग बात है। यानी हफ्ते अमाल का मतलब है कि नेकी की लेकिन उसका अजर नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला दोनों तरह से हफ्ते अमाल कर देते हैं, एक ये कि आखिरत में कुछ नहीं मिलना, दुनिया में मिलेगा, एक हफ्ते अमाल ये है। दूसरा हफ्ते अमाल ये है कि दुनिया में भी कुछ नहीं मिलना, आखिरत में भी कुछ नहीं मिलना, ये दोनों हो सकते हैं। कि ऐन मुमकिन है कि अबू जहल को चूँकि बदर में अल्लाह ताला ने उठा लिया तो उसके लिए ये फ़ैसला हो कि इसका हफ्ते अमाल दुनिया में भी होना है, आखिरत में भी होना है, ऐन मुमकिन है। तो ये भी कायदा है, इसको सामने रखना चाहिए। तो जब हफ्ते अमाल का फ़ैसला अल्लाह ताला कर लेते हैं तो दुनिया में आदमी पर आसानी आने लग जाती है। मौलाना इस्लाही की ज़ुबान से मैंने कई दफ़ा ये सुना है कि जब अल्लाह की तरफ से मुश्किलें आनी बंद हो जाएं तो फ़िक्र करनी चाहिए कहीं अल्लाह ने भुला तो नहीं दिया, मोहलत के अंदर तो नहीं डाल दिया। ये वाली मोहलत के लिए यजदादु इसमत के अपने गुनाहों में इजाफा कर लें, कहीं ये तो नहीं हो गया। तो इनको अब पूरी बात दोबारा दोहराइए, समझिए कि अबू सुफियान और अबू जहल और कुरैश पूरी कोशिशें कर रहे हैं कुफर में, अपने जत्थे इकट्ठे करते हैं, फौजें लेके आ जाते हैं, मदीना पे चढ़ाई कर देते हैं, खौफ पैदा कर देते हैं, इस ऐसा सब कुछ करने की क्यों मौका दिया जा रहा है, उसको यहाँ बयान किया जा रहा है। तो ये बेफिक्र रहो, अल्लाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अल्लाह का जो काम अल्लाह ने दुनिया में आपके ज़रिए से लेना है वो नहीं रुकेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता इनके अपने लिए नुकसान का बायस होगा कि अल्लाह ताला इनको मौका दे रहे हैं कि ये आखरत में इनका कोई हिस्सा ना रहे। जो पहली आयत थी आयत 176, उसमें जो जुमला है युरीदुल्लाहु अल्ला यजअला लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि इनका आखरत में कोई हिस्सा ही ना रहे, ये हफ्ते अमाल है, ठीक है। और फिर बताया कि मैं इनको अब जो मोहलत दे रहा हूँ ताकि ये और गुनाहों में इजाफा कर लें कि बिल्कुल ही महरूम हो जाएं आखरत से। तो अब ये आगे जब हम चलेंगे तो सूरह ज़ुखरफ़ में और सूरह बनी इसराइल में इसको अल्लाह ताला मज़ीद वाज़े करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये जुमला बोला है, एक बड़ा ही ख़तरनाक जुमला है, कि अगर ऐसा ना होता कि सारे के सारे इंसान इस रास्ते पर चल पड़ते तो मैं काफरों को इतना देता कि उनकी सीढ़ियां और छतें सोने की हो जाती, चांदी की हो जाती, इतनी ढील दे देते हैं अल्लाह ताला। तो अपने इर्द गिर्द जो इस तरह के लोग हो सकते हैं कि बहरहाल हमें फैसला नहीं करना, लेकिन उसमें सोचना ये चाहिए, गम नहीं करना चाहिए, ये मतलब है, क्योंकि यहाँ शुरू यहाँ से हुआ है वला यहज़ुन का, तुम्हें इन लोगों की कामयाबियाँ हुज़न में मुबतला ना करें, दुखी ना करें, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने एक दूसरे कायदे के तहत देना शुरू कर दिया है। तो जब आपके पास तंगी है, आपको मुश्किलें आ रही हैं, तो समझिए कि खुदा मुझे झंझोड़ रहा है, बेदार कर रहा है, वो अपनी उंगली मुझे पकड़ा के चल रहा है कि बचो, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ, और अगर ये काम नहीं हो रहा, आपके नुकसानात होने बंद हो जाएं, अगर हो भी तो वो बेमानी सा हो, तो समझ लीजिए कि काम गड़बड़ की तरफ जा रहा है। लाजम नहीं है कि हर आदमी जिसको मुश्किलें नहीं आ रही हो, लेकिन बहरहाल कान ज़रूर खड़े हो जाने चाहिए, अपने बारे में फैसला करना है, दूसरों के बारे में नहीं। ये नहीं कि आप अपने हमसाए को जाकर कहना शुरू कर दें कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आ रही, तुम ज़रा गौर करो अपने ऊपर। हाँ, करीबी है तो ज़रूर अर्ज़ कर दें, लेकिन अपने बारे में ये बात समझनी चाहिए। तो ये बहुत सख्त मकाम है, यानी काफ़रों के लिए ये आयतें, मेरा ख़्याल है कि अबू जहल भी सुनता तो शायद ठीक हो जाता, इतनी सख्त है, बहुत सख्त। लेकिन जब ख़त्मे कुलूब होता है तो सख्त से सख्त बात भी मजाक लग रही होती है, बिल्कुल मजाक लग रही होती है, कोई बात नहीं देख लेंगे। यानी ये जुमले बोले गए कुरैश मक्का की तरफ से, अच्छा दोज़ख पे 19 फरिश्ते हैं, तो कोई नहीं, दो चार को मैं संभाल लूँगा, बाकी को तुम देख लेना। आदमी यहाँ तक गिर जाता है अगर उसके अंदर का ये इंसान फौत हो जाए। तो ये कायदा जो है ये बहुत अहम है, ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, तौफीक देते हैं, और इधर शयातीन होते हैं उधर फरिश्ते होते हैं तौफीक वाले कायदे में। तो जब आप नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह की सारी फौजें आपकी मदद के लिए होती हैं, सारी फौजें, लेकिन यहाँ सिर्फ शैतान होता है और मोहलत होती है, बस वही अल्लाह की रहमत के कायदे के मुताबिक। ये नहीं कि अब आप फौजें की फौजें उसको गुनाह पे उभार रही, नहीं, शैतान के सिर्फ वसवसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फरिश्ते जो हमारी मदद के लिए आते हैं वो बड़े काम करते हैं, वो आपके तसल्ली देना, आपको आगे बढ़ाना, आपको दुआएं देना, आपके लिए खुदा की मदद के लिए दरख्वास्त करना, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो जो नेकी पर चलने वाला प्रोग्राम बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत ज़्यादा हौसला है खुदा की तरफ से, बहुत ज़्यादा तावुन है खुदा की तरफ से, उसमें तौफीक का लफ्ज़ बोला जाता है, यानी अल्लाह ताला मुआफिक हालात पैदा करते चले जाते हैं, जज्बात के अंदर भी, एहसासात के अंदर भी। इसको हमारे बुज़ुर्ग तहज्जुद के बारे में बड़ा अच्छा बयान करते हैं कि तहज्जुद के लिए उठने को दिल नहीं चाहेगा, लेकिन आप खड़े होकर तलावत करना शुरू कर दें, बस दिल लग जाएगा उसमें, अब आप लगेगा कि घंटा पढ़ते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो जगहें होती हैं जहाँ पे अल्लाह ताला के फिर तौफीक आती है। और ये याद रखिए कि अल्लाह का ये वादा है कि जो खुदा के रास्ते में निकलेगा खलूस नीयत के साथ और जितनी मेहनत करेगा उसमें लाजमन अल्लाह ताला हदायत देंगे, ये पक्का वादा है अल्लाह का, लाजमन हदायत देंगे। जहाँ वो जद्दोजहद छोड़ देगा, जहाँ वो अपने रास्ते दरवाजे आँख दिमाग के बंद कर देगा, फिर ख़त्म। जब तक वो लगा रहेगा, कोशिश कोशा रहेगा, तब तक अल्लाह ताला उसके मामला करते रहेंगे। तो ये वो बहुत बहुत ही भारी मकाम है, यानी आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे घबराहट होती है इन आयतों को देखकर कि इतनी सख्ती है उस इस कानून के अंदर कि बस अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इनको मोहलत दे रहा हूँ ताकि और गुनाह कर लें, और गुनाह कर लें, और गुनाह कर लें। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, इनके लिए इहानत आमेज़ अज़ाब होगा। अब यहाँ देखिए कि तीन आयतों में अज़ाब की तीन किस्में बताई गई, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कुरान मजीद के ऊपर मैं पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ, ये अजीब किताब है। किसी एंगल से इसमें दाखिल हों, किसी एंगल से, कि मुझे ये चीज़ तलाश करनी है, वो आपको मिल जाएगी। दीन के हवाले से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि आपको इसमें बंदूक मनाने का तरीका ढूंढने जाए तो वो मिल जाएगा। इसके अंदर जो मौलाना फराही एक जुमला बोला करते, खैर पुराने लोग भी बोलते हैं कि कुरान हिकमत का ख़ज़ाना है, हिकमत का ख़ज़ाना है। हिकमत होती क्या है? साइंस में हिकमत क्या होगी कि आपको पता चल जाए कि मैटर का कौन सा पार्टिकल क्या काम करता है, कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है, हम फलां फलां चीज़ मिलाकर क्या चीज़ बना सकते हैं, ये उसकी हिकमत होगी। मेडिसिन की हिकमत क्या होगी कि बीमारी क्या होती है, उसकी तशखीस कर सकें, उसका इलाज कर सकें। असल हिकमत क्या है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, इसको चलाने वाले ने किन असूलों पर इसको चलाया है, मैं क्या काम करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, क्या काम करूँगा तो नाकाम हो जाऊँगा, असल हिकमत यही होगी। तो ये इस हिकमत से भरी हुई किताब है, इस हिकमत से भरी हुई किताब है कि इस दुनिया में कैसे रहना है और क्या काम करूँगा तो कामयाब होऊंगा, क्या काम करूँगा तो नाकाम होऊंगा, ये इस किताब का लाजमी जो कह लीजिए कि इल्म है वो इसके अंदर दिया गया है। और फिर और पहलुओं से हिकमत, दीन की बुनियादें क्या हैं, दीन की सच्चाई क्या है, दीन होता क्या है, दीन अपनाया क्यों जाए, दीन लेना कहाँ से है, दीन को अपनाने की वजह ही आखिर क्या है, सब सवालों के जवाब देता है। तो इसके अंदर दानाई भरी हुई है, लेकिन वो भरी हुई किस तरह से है, जिस तरह जंगल में न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, कीड़े मकोड़े, पौधे पत्ते, सब कुछ बिखरा हुआ है। एक आयत में अभी आपको मसलन एक पौधे में, मसलन मटरों के दाने में आपको प्रोटीन मिल रही है, साथ ही पालक के अंदर आयरन मिल रहा है, साथ ही किसी गोभी के अंदर आपको एंटी क्या उसे वो ऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि बस आपको एक जगह ढेर मिल जाए, जैसे सोने की कान निकल आई, नमक की कान निकल आई, ऐसा नहीं। तो ये कोई एक चैप्टर में ऐसा नहीं करता, आप पढ़ते चले जाते हैं, आपको ये आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ें देता चला जाता है। तो मतवाजन ग़ज़ा जिस तरह से होती है कि आप दो चार चीज़ें मिक्स करके खाएं, जिसमें प्रोटीन लेनी है, कुछ आपने सब्जियों में से कुछ लेना है, कुछ विटामिन लेने हैं, कुछ लेना है, तो आप एक अच्छी ग़ज़ा क्या है जिसमें सारी चीज़ें आप मिला दें। कुरान मजीद इस तरह की किताब है कि ये ऐसे लेकर चलता है अपने मज़ामीन को कि बीच में से निकलते चले आते हैं, आपकी जहन साजी होती चली जाती है, लेकिन उन्हीं की जो सोच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ अब इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने बताया है कि ये काफिर ये ना समझे कि मैं जो मोहलतें दे रहा हूँ इनको, या इनके साथ ये जो नरमी कर रहा हूँ, ये कोई आसान काम है, इनके लिए फ़ायदे की चीज़ है, नहीं, हरगिज़ नहीं। तो मैं इनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता। इसका मतलब है कि इस टाइम तक कुछ काफिरों के अंदर ईमान की कुछ रमक थी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो जो वापस आ जाएंगे अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद की तरह, सो बिस्मिल्लाह। उनके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा, जो वापस नहीं आएंगे वो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा वक्त हो चुका है तो चलिए यहाँ रोक लेते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।